भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है आनंद मगन आत्म पंछी आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जा
ओम शांति। डॉक्टर सविता दीदी जी का हम स्वागत करेंगे एक हाथ हिलाकर। आज आप हमारे बीच में मंथन रूह रिहान एवं फरिश्ता स्थिति को समझाने के लिए इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको ज्ञान में चलते हुए 44 इयर्स हुए हैं और मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने अपना जीवन बाबा की बेहद की सेवाओं में समर्पित किया। समर्पित रूप से सेवाएं देते हुए आपको 31 वर्ष हुए हैं और मधुबन में आपको 30 वर्ष हुए हैं। उसमें शुरुआत में 10 वर्ष आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी और बाद में बड़ी दादी जी की सेवा के निमित्त आपको सौभाग्य मिला, बड़ा चांस मिला दादी जी की सेवा करने का। वुमेन्स विंग की आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ही एक्टिव रूप से इस विंग की सेवाएं आप संभालती हैं। देश विदेश में भी आप अपनी सेवाएं देती रहती हैं और यहाँ पर जो भी राजयोग शिविर एवं पट्टियों के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी आप अपनी सेवाएं देती हैं। तो अब हम जानेंगे दीदी से मंथन रूह रिहान एवं फरिश्ता स्थिति के बारे में। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर हैं, बाबा ज्ञान का सागर है और हम सब बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, शायद ही कोई होगा जो रोज ज्ञान नहीं सुनता होगा, यानी रोज मुरली नहीं सुनता होगा बाबा की। कभी कोई ऐसा कारण बना मिस हो गई तो बात अलग है, नहीं तो हम सभी सुनते हैं। तो एक है मुरली सुनना और दूसरा है उसको समाना और तीसरा है स्वरूप बनना। तो सुनना तो सहज है, सुनने से भी खुशी होती है हमको कि बाबा ने कितने अच्छे ज्ञान के राज हम बच्चों को समझाए हैं, समझा रहे हैं। और वो मुरली के शब्दों में भी ताकत होती है जो आत्मा में शक्ति भरती है। तो सुनने से भी हम ये महसूस करते हैं, जिसे हम कहेंगे अल्पकाल की खुशी और अल्पकाल की शक्ति हमें मिल जाती है और सुनने का सुख भी है। जैसे अभी हम गीत सुन रहे थे, भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। तो दूसरा है समाना, कि हमने जो सुना उसको कितना मंथन किया। जब विचार सागर मंथन करते हैं तब वो ज्ञान हमारा अपना बनता है, यानी हम उस पर अपना अधिकार महसूस करते हैं और उसे हम जब चाहें यूज कर सकते हैं। तब वो ज्ञान वो शक्ति होता है जो हमें विजयी बनाता है, क्योंकि ज्ञान परिस्थितियों पर माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारी पढ़ाई है, ऐसा हम कहेंगे प्रैक्टिकल में। एक है थ्योरिटिकल कि थ्योरी पढ़ ली हमने, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तब जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जो परिस्थितियां आ रही हैं, उस पर विजय कैसे होगी? जब उस ज्ञान को यूज करेंगे, तो वो ज्ञान को जब हम हजम करते हैं, दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे भोजन हम खाते हैं, लेकिन जब वो हजम हो जाता है तब वो हमारे लिए मांस और खून बनता है, तब शरीर की शक्ति बनती है। अगर वो पचता नहीं है तो फिर कितना भी हम अच्छा भोजन खा लें, शरीर को शक्ति नहीं मिलती है। और ऐसे ही हम जानते हैं कि गाय जो है वो जब खाना खाती है तो जुगाली करती है, तो उसी टाइम जुगाली नहीं करती है, जब वो बैठती है उस समय, जब वो फुर्सत में आ जाती है उस समय वो फिर से जो खाया हुआ है मुंह में लाती है, उसको फिर चबाती है, फिर महीन करती है, फिर अंदर लेती है। तो हमने भी जो ज्ञान सुना उसकी गहराई में जाना, उसकी महीनता में जाना, ये है उसकी जुगाली करना। तो या तो हम उसको रिवाइज करें, नहीं तो क्या होता है, मुरली सुनी, बहुत अच्छी मुरली थी, आज की भी बहुत अच्छी मुरली थी, फिर 2 घंटे के बाद पूछेंगे बाबा ने क्या कहा, तो कितना याद आता है। मुरली तो बहुत अच्छी थी लेकिन सोचना पड़ता है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, फिर कोई एक आधी पॉइंट मुश्किल से हमें याद आती है। तो अगर वो हमको स्मृति में ही नहीं है तो स्थिति भी हमारी नहीं बनेगी। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, और अगर स्मृति में नहीं है तो कर्म में भी वो नहीं आ सकता। इसलिए हम दादियों को देखते थे, आप सुनते होंगे कि जैसे बड़ी दादी जी थे, दादी प्रकाशमणि जी, वो 4 बार मुरली पढ़ते थे। बाबा कहता है मुरली से प्यार माना मुरली धर से प्यार, तो 4 बार मुरली पढ़ना माना याद हो जाएगी सारी मुरली। 1 बार में कोई मुश्किल से 1-2 पॉइंट याद आती है, 2 बार में हमें 1/4 मुरली समझो याद आ जाएगी, 3 बार पढ़ी तो आधी से ज्यादा मुरली हमें याद होगी, और 4 बार पढ़ेंगे तो पूरी मुरली हमें याद होगी। तो मैं कई बार सोचती थी कि दादी तो ओम मंडली के टाइम से हैं, इतनी बार दादी ने मुरली सुनी है, पढ़ी है, अभी भी दादी 4 बार मुरली पढ़ते हैं। और यही हम देखते थे कि दादी जी बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप थे, बाप समान थे, उन्हें याद नहीं करना पड़ता था, वो नेचुरल था उनका, क्योंकि स्मृति ही जो बाबा ने सुनाया वही उनकी स्मृति में था और वही हुई उनकी स्थिति थी। तो चलो हम 4 बार नहीं पढ़ सकते लेकिन 2 बार तो कम से कम पढ़ सकते हैं। सुबह तो है ही नियम हमारा, लेकिन फिर शाम को भी या बीच में जब भी टाइम मिलता है, आजकल तो बहुत साधन है हमारे पास, सहज हम मुरली प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो नेट से हो, और भी सोशल मीडिया है जिनसे हमें मुरली मिल जाती है। तो ज्ञान का मनन चिंतन करना, जितना हम उसका मनन चिंतन करते हैं उतना हम माया जीत सहज बनते हैं, उतना हम निर्विघ्न बनते हैं। ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे हम कहेंगे तो अस्त्र शस्त्र सैनिक प्रयोग करते हैं, और वो युद्ध के मैदान में विजयी बनने के लिए उसे प्रयोग करते हैं। पर उनका अभ्यास करना होता है, जो भी शस्त्र हैं उसका वो नियमित अभ्यास करते हैं, तब वो निशाना जो लगाना चाहते हैं या जहां निशाना लगाना चाहते हैं वो सही समय पर निशाना लगता है। अगर वो अपने शस्त्रों का एक दिन भी अभ्यास नहीं करेंगे तो समय आने पर निशाना चूक सकते हैं। तो मंथन करना क्या है? अभ्यास करना है। जितना हम अभ्यास करेंगे, रोज रोज की मुरली में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता ही है जिस पर हम विचार चला सकते हैं, तो फिर वो पॉइंट समय पर काम करेगी। या मुझे लगता है कि बाबा ने ये बात मेरे लिए कही, हाँ ये मेरी कमजोरी है और आज मुरली में वही बात आई है, और अगर मैंने उसको बार बार स्मृति में लाया, उस पर मनन किया, उसकी गहराई में गए, तो फिर हम उसे यूज कर पाएंगे। मानो मुझे गुस्सा आता है, साधारण सी बात है, गुस्सा आता है। अब गुस्सा आता है किसी भी बात को लेकर के, या कोई गुस्सा करता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। किसी का गुस्सा भी हमें गुस्सा दिलाता है या किसी की बात पर हमें भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन मायाजीत बनना माना क्रोध एक विकार है ना, कि उस स्थिति में भी मैं शांत रह जाऊं, उस स्थिति का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, तब हम कहेंगे हमने जीत लिया उसको। तो वो कैसे होगा? जब मुझे मेरा स्वरूप याद है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति के सागर की संतान हूं, और कोई भी आत्मा जो माया के वश है उस पर मुझे रहम करना है, उसके प्रति भी मुझे शुभ भावना रखनी है, उसे मुझे सहयोग देना है, ना कि उसके जैसा बन जाना है। तो अगर मुझे वो स्मृति में आ गया तो वो परिस्थिति से हम पार हो जाएंगे, माना शांत रह जाएंगे। जैसे कई बार बाबा कहता है कोई क्रोध करता है तो आप उस पर फूल बरसाओ। अब फूल बरसाने का मतलब ये नहीं कोई फूल डालने की बात है, लेकिन फिर भी हम मीठा बोल रहे हैं, हम उनसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं, वो चाहे जैसा भी कर रहे हैं लेकिन हम प्यार से व्यवहार कर रहे हैं, तो हम कर पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा? वही प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, मैंने कुछ भी बोल दिया मुंह से, जो उस गुस्से में तो जो आता है मुंह से फिर वो निकल जाता है, और फिर बाद में पछताते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं बोलना था, मैं ऐसा बोल गई, मेरे मुंह से निकल गया। तो क्या हुआ, पास हुए या फेल हुए, क्या कहेंगे? तो हमने शस्त्र हमें मिला है, मायाजीत बनने की विधि बाबा ने दी हुई है, लेकिन क्योंकि वो समाया नहीं है अपने अंदर, तो समय पर वो निशाना लगा नहीं, चूक गए हम, बाद में याद आया, समय गुजरने के बाद वो बात याद आ रही है। बाबा जैसे ड्रामा की पॉइंट कहते हैं कि ड्रामा हमें अचल अडोल बनाता है, कोई भी परिस्थिति आई भले ही उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, बुरा हो रहा है हमारा, हमें लग रहा है कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है, लेकिन बाबा ने कहा उसमें भी कल्याण है, और उसको समझो नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हमने इसे पास किया था, आज भी जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि कोई भी बात आती है तो क्या है, पेपर है, उसे पेपर समझकर पास करना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, आप तीनों कालों को जानने वाले हो, तो जो तीनों कालों को जानने वाले हैं वो क्यों क्या कैसे का संकल्प नहीं उठाएंगे, क्योंकि पता है क्यों हो रहा है, पता है कि इसके पीछे क्या राज है ना? तो फिर जैसे ही उसे हम स्मृति में लाएंगे हमारा मन हलचल में नहीं आएगा, तो ड्रामा की पॉइंट फुल स्टॉप लगाने में हमको मदद करती है कि इसमें मेरा कल्याण है, कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ है, भले अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर वो पॉइंट मुझे पक्की है, मुझ में समाई है, तो तुरंत हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा, हम उसे ज्यादा सोचेंगे नहीं, ड्रामा कहकर खत्म, जो हुआ वो ड्रामा, ये ड्रामा में था। और अगर नहीं तो ड्रामा ड्रामा भी कहते रहेंगे और हलचल में भी आते रहेंगे, स्थिति भी हमारी चलती रहेगी। तो इसका मतलब ड्रामा की पॉइंट ने काम नहीं किया। तो इसीलिए मंथन का महत्व, इसीलिए बार बार बाबा हमें कहते हैं और कहते हैं ज्ञान के लिए अपनी घोट तो नशा चढ़े, जितना हम उसे घोटेंगे तभी हमें नशा चढ़ेगा, तभी हमें उसकी खुशी अनुभव होगी, जो अविनाशी खुशी जिसे हम कहते हैं अतिंद्रिय सुख जो अनुभव होता है। जो नशा लेते हैं ना, दुनिया में भी जो नशे लेने वाले हैं वो क्यों नशा लेते हैं, थोड़ा समय के लिए वो दुनिया को भुलाने वाला होता है और खुशी में लाने वाला होता है उनको, चाहे वो शराब पीते हैं या और भी जो भी कई प्रकार के नशे लेते हैं। और ऐसे कहते हैं कि भांग का जो नशा होता है वो उसको जितना ज्यादा घोटा जाता है उतना ज्यादा वो भांग चढ़ती है, तो इसीलिए बात कही गई। तो यहाँ भी जितना ज्ञान को हम स्मरण करते हैं, जितना हम उसकी गहराई में जाते हैं, उतना रूहानी नशा, नारायणी नशा जिसको बोलते हैं बाबा, वो नारायणी नशा हम अनुभव करते हैं। तो ज्ञान अगर स्मरण कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो कई बार सवाल उठता है कि कैसे करें, दिमाग तो चलता ही नहीं है ज्ञान मंथन करने के लिए, कोशिश करते हैं लेकिन विचार चलते ही नहीं है दिमाग में। तो बाबा ने कहा कि जैसे व्यर्थ संकल्प के लिए हम कितना जल्दी क्यों क्या कैसे में चले जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब प्रश्नों में हम जाते हैं और फिर वो क्यों बन जाती है पूरी, इतनी फास्ट गति से हमारे संकल्प चलते हैं कि उस चक्रव्यूह से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही मंथन भी जब हमें करना है तो भी यही प्रश्न लाने हैं, क्यों क्या कैसे। बाबा ने मुरली में ये बात कही या ये पॉइंट मुरली में आई, इस पॉइंट का क्या राज है और इस पॉइंट को मैं किस विधि से अपने लिए यूज कर सकती हूँ जो मुझे ये विजयी बनाए, और कैसे इस पॉइंट को हम दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं सेवा में। तो जब हम इन प्रश्नों से उसको सोचेंगे तो अपने आप उसके उत्तर हमें आएंगे। अभी जैसे आज की मुरली में बाबा ने होली के ऊपर कई बातें कही, होली पर थी ना आज की मुरली, तो मानो अगर मेरा विचार नहीं चलता है उसके ऊपर तो हम उसको लिख भी सकते हैं, सारी मुरली का जो सार मुझे समझ में आया उसको हम आधे पन्ने में या जितना भी हम लिख पाते हैं, उसको जितना मुझे स्मृति में आता है उतना हम उसे लिख लें, फिर लिख के पढ़ें, तो वो हमारे अंदर जाएगा। और रोज का जैसे अपना नियम बना लें कि आज जो हमने मुरली सुनी वो मुरली सुनकर के मुझे कितना याद रहा, यानी वो मेरे अंदर गया जो मुझे याद रहा और उसको मैंने इस तरह से रिवाइज किया, समझो। जैसे अभी भी आप लिख सकते हो, हाँ लिख सकेंगे, सुबह की मुरली में बाबा ने क्या होली का अर्थ बताया, हाँ 5 मिनट में सभी लिखो अपने अपने नोट्स की डायरी में कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, तो इस तरह हम अपनी आदत डालें रोज, तो अगर ये शुरुआत होगी, माना इस तरह से भी अगर हमने शुरू किया, तो फिर हमें चिंतन करने की आदत पड़ेगी। कोई भी नई आदत हम शुरू करते हैं, शुरू में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद तो फिर हमारी जैसे वो नेचर बनने लगती है। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ही मुरली सुनी, सुनने के बाद बाहर आए, आपस में एक दो मिलते हैं मानो, तो आपस में आज बाबा ने क्या कहा, आज क्या खास बात थी मुरली में, या नहीं तो हम अपने आप में ही मन अगर कोई नहीं है हमारे साथ, तो मन ही मन हम एक निश्चित कर लें कि हाँ, नाश्ता करने से पहले मुझे एक बार पूरी मुरली को अपने मन में, जितना भी मुझे याद आता है, सारी मुरली तो याद नहीं होगी, लेकिन जो भी कुछ बातें हैं वो जरूर मुझे रिवाइज करना। और कोई ना कोई धारणा की विशेष बात हर रोज की मुरली में होती है, और फिर अपने मन में वो संकल्प ले लें कि सारे दिन आज ये धारणा की बात मुझे स्मृति में रखनी है। अभी जैसे बाबा ने होली के बारे में कहा कि जलाना है, फिर बाबा के संग के रंग में हम आते हैं, और फिर तीसरा मनाना होता है। तो फिर आपस में भी हम परिवार में भी जो मिलन मनाते हैं, तो जो मेरे पुराने संस्कार हैं, क्या वो अभी तक जले हैं, माना समाप्त हो गए हैं पूरी तरह से, या अभी भी कहीं ना कहीं अगर वो दबे हुए हैं, जले नहीं हैं, जलाया माना पूरी तरह से नामो निशान खत्म, लेकिन अगर दबे हैं तो फिर कहीं ना कहीं जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है, फिर से वो इमर्ज हो जाते हैं। तो समय प्रति समय वो संस्कार फिर आते रहते हैं। तो ये अपनी चेकिंग, जैसे आज बाबा ने जो धारणा की बात बताई, फिर हमने मनन किया। मनन करने से जो हमारी स्थिति बनी, बाबा कहता है जैसे अभी हमने समझा कि वो जो सुख होता है ज्ञान को सिमरन करने का, सिमर सिमर सुख पाओ जो कहा, वो सुख तो हम अनुभव करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम औरों के प्रति भी वो सुख देने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि हमारी सुख स्वरूप की स्थिति है, तो हम अन्य आत्माओं को जो भी सुनाएंगे वो अनुभव से सुनाएंगे। एक होता है वर्णन करने वाले, जैसे हमने ज्ञान सुना, तो वो ज्ञान सुना के वर्णन करना मुश्किल नहीं होता। जैसे बाबा कहते हैं 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो एक बच्चा भी जब 7 दिन का कोर्स सुनेगा तो उसको भी कुछ बातें याद होती हैं, तो वो भी उसको रिपीट कर देगा, उसको वर्णन कर देगा, तो वो वर्णन करना एक अलग बात है, तो वो दिमाग तक बात जाती है, माना एक इन्फॉर्मेशन है, एक हमें मिल गई, मतलब एक जानकारी मिल गई, अच्छा ये बात है, अच्छा ऐसे ज्ञान है, ऐसे ज्ञान है। लेकिन जब हम वो स्वरूप हैं उसके, तो फिर जो हमने बात कही वो दिल तक लगती है, और जो दिल तक बात लगी वो उसमें परिवर्तन लाएगी, यानी उसका जीवन बनाएगी। बाबा कहता है एक होता है अच्छा अच्छा कहने वाले, है ना, तो एक होता है अच्छा कहना, पर अच्छा बनने की हिम्मत नहीं आती है, लेकिन अच्छा बनने की हिम्मत आ जाए उसके अंदर, यानी औरों के जीवन को भी परिवर्तन करने के निमित्त, तो बाबा कहते हैं खुद भी हम निर्विघ्न तो बनते हैं, लेकिन औरों के भी विघ्न विनाशक बन जाते हैं, उनके लिए भी दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं संतुष्ट होंगी और संपन्न अनुभव करेंगी, क्योंकि ज्ञान रतन है, तो ज्ञान रतन हमारी कमाई है, पढ़ाई भी है जैसे हम कहेंगे, तो रत्नों की वैल्यू होती है ना, जो जितना रत्नागर होता है उसको हम कहते हैं वो साहूकार है, संपन्न है, रत्नों के मालिक हैं, तो लेकिन हमने उन रत्नों को परखा है, उनकी कितनी वैल्यू की है, अगर हमने वैल्यू नहीं की उसकी, तो फिर वो पत्थर के समान। ये एक कहानी आती है कि एक भिखारी था, तो भीख मांग रहा था एक राजा के राज्य में, तो राजा गुजर रहा था, कई बार राजा जैसे वेश बदल करके अपने राज्य का चक्कर लगाते हैं, तो भिखारी उसके सामने आया, तो राजा ने सोचा ये भीख मांगता है, रोज भीख मांगता होगा, अब ये मेरे सामने आ गया भीख मांगने, तो इसको मैं ऐसी चीज दूं कि सदा के लिए ही इसका भीख मांगना छूट जाए। तो उसने अपने गले में जो रत्नों की माला थी वो निकाल करके उसको दे दी। अब वो भिखारी को वो रत्न तो नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था, उसको तो वो पत्थर लगे, उसको लगा ये क्या दे दिया मुझे, ये तो ना कोई खाने की चीज है और ना ही कोई धन है, ये पत्थरों का मैं क्या करूंगा। मतलब उसको गुस्सा आ गया कि राजा ने मुझे क्या दे दिया भीख में, और गुस्से के कारण उसने उसको तोड़ दिया, मतलब और तोड़ के वो जो पत्थर उसकी मुट्ठी में थे उससे वो पक्षी उड़ाने लगा, या जहां उसको लगा वो पत्थर मारने लगा उस। और ऐसे करते करते जब लास्ट उसके हाथ में था तो किसी की नजर पड़ गई और उसने देखा, तो उसने कहा कि क्या फेंक रहे हो तुम, तो उसने कहा, बताया उसने, वो तो नहीं पहचाना वो राजा ने मुझे दिया, तो उसने कहा कि एक ने मुझे ये माला दी थी, ये पत्थरों की माला मैं क्या करूंगा, तो मैंने ये सारे पत्थर फेंक दिए। तो उसने कहा ये पत्थर नहीं है, ये रत्न है, और अगर तुम इसको बाजार में बेचोगे तो तुम्हें बहुत धन मिलेगा, और अगर तुमने वो सारे बेचे होते तो तुम्हारी जिंदगी भर की जो गरीबी है वो दूर हो जाती, तुम्हें कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ती। पर अभी तो वो फेंक चुका था सारे। तो ऐसे ही बाबा तो हमें रोज ज्ञान रत्न देते हैं, और बाबा कहता है एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपए की है, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं वो अच्छा कमाते हैं, हम सब जानते हैं पढ़ाई से कमाई है। तो हमारी ये पढ़ाई कोई एक जन्म की इनकम कराने वाली नहीं, कोई वर्तमान समय की ही इनकम हो रही है नहीं, लेकिन आने वाले 21 जन्म तो बाबा की गारंटी है हम पद्मा पदम पति बनते हैं। लेकिन बाबा कहता है पौना कल तक सुखी रहते हैं, आगे भी ये हमारी कमाई चलती है। तो इतनी कमाई हम कर रहे हैं तो ये ज्ञान रत्नों की हमारी कमाई है। तो इसीलिए रोज हमें अटेंशन दे करके, कई बार ऐसे भी सोचते हैं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम इतना बिजी रहते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति है, नौकरी है, बिजनेस है, जो भी है हमारा उसको हम संभालते हैं, फिर बाबा के ज्ञान योग का पुरुषार्थ जो समय है सेवा उसमें भी देना पड़ता है, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम इतना बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, घर से सेंटर आने जाने में टाइम लगता है, चलो आजकल नहीं आते जाते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें जो भी 5 मिनट का समय मिले या थोड़ा भी समय जब भी मिलता है काम, हमेशा हम फुल टाइम काम में बिजी नहीं होते हैं, या हमारे सारे काम बुद्धि वाले काम नहीं होते हैं, जैसे खाना बनाने का काम है घर में या सफाई करने का काम है, तो कोई उसमें बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि इसमें क्या क्या डालना है, फिर बुद्धि अलग चलती है और हाथ अलग चलते हैं। तो इसीलिए कई बार बाबा कहता है कम कार्डे दिल याद है। तो इस समय हम मन में फिर ज्ञान को लाएं और उसको उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें। तो जो भी थोड़ा थोड़ा सा भी समय मिलता है उसे हम ज्ञान के मंथन में यूज करें, आदत बनाएं अपनी। मेन बात यह है कि जब हम अटेंशन देंगे उसको अपनी आदत में लाएंगे तब वो ज्ञान की महीनता जो है वो हमारा स्वरूप बनेगी, और फिर हम सहज ही हर परिस्थिति में विजयी होंगे, क्योंकि तब हमारे शस्त्र काम कर रहे हैं। जो पॉइंट जिस समय हमें यूज करनी है हमें याद है और हम उसे यूज करते हैं, और उसमें इतनी पावर भी है क्योंकि हमने उसे बार बार अपने मन में उस चीज को चिंतन किया है, उसे स्वरूप में लाया है, तो अब उसमें इतनी पावर है कि उस समय वो पॉइंट काम करेगी जब हमें उसकी आवश्यकता है। फिर वो चाहे काम विकार पर विजय है, चाहे क्रोध पर विजय है, चाहे लोभ पर विजय है, चाहे मोह पर विजय है, चाहे हमारे मैंपन, बाबा कहता है मेरापन, जो भी आता है ये सब माया के भिन्न भिन्न रूप है, ये मोटे रूप है, माया रॉयल रूप में भी आती है, तो उसको भी हम परख सकेंगे, हमारी परखने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, जो माया के रिफाइंड रूप भी आते हैं हमारे सामने। और फिर दूसरा है रू रिहान करना बाबा से। बाबा से रू रिहान करना माना साधारण भाषा में हम कहेंगे बात करना। जैसे आपस में हम बात करते हैं तो उसको हम रू रिहान नहीं कहते क्योंकि हम शरीर समझकर बात करते हैं, लेकिन बाबा से हम कैसे बात करेंगे? आत्मा समझ करके परमात्मा को हम याद करते हैं, तो रूह की रूह से बात है, इसीलिए रू रिहान कहा उसको। तो क्या रू रिहान करनी है? जो प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई हैं, जो बाबा ने हमें बनाया है, वो बाबा का गायन करना कि हम क्या थे और क्या से क्या बाबा ने हमें बना दिया, कितना श्रेष्ठ हमारा जीवन हो गया आज। या फिर बाबा के गुणों का गायन करना, जो उसके गुण हैं, हम कैसे योग करते हैं, जैसे हम कहेंगे योग की स्टेजेस हैं, राजयोग जब सिखाते हैं ना, तो पहली स्टेज कहते हैं मेडिटेशन करना, जो मंथन की बात कही हमने, तो हम पहले ज्ञान का शुद्ध चिंतन शुरू करते हैं क्योंकि दिन भर के जो विचार होते हैं वो सांसारिक हो सकते हैं, हमारे इसके उसके हो सकते हैं, कोई समस्याओं के हो सकते हैं, तो हम उससे मन को निकाल करके पहले मंथन में ले आते हैं कि ज्ञान चले मेरी बुद्धि में। तो जो ज्ञान बाबा ने मुझे दिया, आत्मा का ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ऐसे ही समझाते ना, तो पहले मंथन करना शुरू करेंगे, शुद्ध चिंतन शुरू करेंगे। ज्ञान का चिंतन करते करते फिर मन बाबा के साथ रू रिहान में। तो रू रिहान हमने की क्या किया? बाबा के गुणों का स्मरण किया, ऐसे ही करते तो धीरे धीरे मन फिर उस अवस्था में स्थित होने लग जाता है। तो क्या पाया हमने बाबा से? कैसे करेंगे रू रिहान आपसे पूछते हैं? एक हमारा गीत भी है ना, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। तो उसमें सारे गीत में यही बातें हैं, तू मिला तो मिल गया जीवन मुक्ति अधिकार, इस तरह से क्या क्या मिला, बाबा को पाने से हमें क्या प्राप्तियां हुई, क्या प्राप्तियां हुई बोलो, कैसे रू रिहान करेंगे बाबा से? फिर कईयों की आदत होती है बाबा से योग करने लगते हैं तो प्राप्तियों की बजाय अपनी कमजोरियों का वर्णन करने लगते हैं, और फिर साथ साथ दूसरों की शिकायत भी करते हैं, इसने ऐसे किया, ये ऐसे हुआ आज, या फिर बचाट देने के लिए बाबा मना नहीं करता है, वो तो एक निश्चित समय है कि हमें रात को सोने से पहले बाबा को चाट देना है, जो भी हमारे पुरुषार्थ में जो भी कमी रही या कुछ भी ऐसा हुआ जो हमें बाबा को बता करके अपने उसको क्लियर करना है। लेकिन योग में बैठ करके भी हम उन कमजोरियों का चिंतन करते रहें, ये योग नहीं है, ये रू रिहान नहीं है। हाँ, अपने कोई भी बोझ है, हमारे मन को कोई चिंता है, कोई टेंशन हो रहा है, वो हमने बाबा को दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा जो हमें स्मरण करना है वो है जो हमें बाबा से प्राप्त हुआ, जो स्वमान हमें बाबा ने दिए, जो स्मृतियां, श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई, जो बाबा से हमारे संबंध हैं, और बहुत मीठे रूप से, जैसे बाबा हमें मीठे मीठे बच्चे कहता है, तो बाबा को भी हम इस रूप में कि बाबा आप कितने मीठे हो, हमें भी मीठा बना देते हो, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम देवता बनेंगे, या हम ही देवता कुल की आत्माएं हैं, हम ही इतने जन्म हम में से गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुंचे, आप ने हमें ब्राह्मण कुलभूषण बनाया, इतना ऊंच श्रेष्ठ बनाया। तो इस तरह से बाबा से हमें रू रिहान करना, फरिश्ता स्थिति बनाना। तो धीरे धीरे फिर मन अव्यक्त स्थिति में चला जाता है, बाबा के समान स्थिति में चला जाता है। फरिश्ता स्थिति हम सब जानते हैं, फरिश्ता स्थिति डबल लाइट स्थिति है। जब केवल मैं आत्मिक स्वरूप में नहीं, लेकिन ये जो शरीर है हमारा, इसको भी हम लाइट रूप में देखते हैं, यानी प्रकाश की काया, फरिश्ता माना प्रकाश की काया वाले, सूक्ष्म शरीर वाले। जो शरीर हमें दिखाई नहीं देता है, स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, जैसे हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं ना, आत्मिक स्मृति का अभ्यास, तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, फरिश्ता शरीर भी हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपने नॉलेज रूपी दर्पण से, जो नॉलेज बाबा ने हमें दी फरिश्ता स्थिति की, उस नॉलेज रूपी दर्पण से अपने आप को फरिश्ता महसूस करना। उस लाइट के कार्ब में हम ये स्थूल वतन में भी चलते फिरते महसूस करें, ऐसे नहीं कि केवल सूक्ष्म वतन में ही मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे अनुभव करना है, लेकिन इस साकारी वतन में भी स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी फरिश्ता स्वरूप में देखें। और वास्तव में हम सबका एक लाइट का शरीर, जिसको हम ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं ना, वो सभी का होता ही है, देखने में नहीं आता है, लेकिन हमारा शरीर एक लाइट निकालता रहता है। जैसे हम सूर्य के लिए कहते हैं कि सूर्य चमकता है आसमान में, तो सूर्य की एक अपनी लाइट है, और उसके साथ साथ उसके चारों तरफ एक प्रतिबिंब होता है लाइट का। जैसे चंद्रमा भी होता है, तो चंद्रमा के चारों ओर भी एक लाइट का प्रतिबिंब भी होता है, उसकी हम परछाया कह सकते हैं या प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो ओरिजिनल लाइट यानी आत्मा जो लाइट है, वो ओरिजिनल लाइट, और फिर उसके साथ साथ ये शरीर की भी लाइट, उसको अनुभव करना। दूसरा लाइट हल्का, जो फरिश्ता स्थिति वाली आत्मा होगी, वो संकल्प बोल कर्म व्यवहार सब में हल्के होंगे, कोई प्रकार का बोझ नहीं होगा के मन पर। अब बोझ हमारे पुराने हिसाब किताब का भी हो सकता है, जिसे हम पाप कर्मों का बोझ कहते हैं, वो आत्मा को भारी बनाता है, उसको उड़ती कला में नहीं जाने देता। फरिश्ता माना उड़ती कला वाली आत्मा, जो हल्के होंगे वही तो ऊपर जा सकते हैं, जैसे हल्की चीज ऊपर जाती है और भारी चीज नीचे आ जाती है ना? तो ऐसे ही जब हमारी स्थिति में हम हल्के होंगे, तब हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं। फरिश्ते के लिए बाबा कहता है, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं वो फरिश्ता है, यानी सब रिश्तों से न्यारे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें संबंध छोड़ देने हैं, इसका भाव ये है कि जो भी हमारे रिश्ते हैं वो सिर्फ सेवा अर्थ हैं। इस दुनिया के जो भी रिश्ते हैं, फरिश्तों का कर्तव्य क्या होता है, फरिश्तों का कर्तव्य क्या होता है, संदेश देने का, उनको मैसेंजर कहते हैं ना। दुनिया में भी जो फरिश्तों की परिभाषा है, ये तो बाबा ने हमें जो फरिश्ता स्थिति बताई, लेकिन दुनिया में भी विदेशों में फरिश्तों को बहुत मानते हैं। अगर आप विदेश में जाएंगे तो वहां कोई भी ऐसा चर्च नहीं होता जहां एंजल्स नहीं दिखाते, फरिश्ते नहीं दिखाते, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की ऑफिशियल बिल्डिंग नहीं होगी जहां फरिश्ता नहीं होगा। तो वो फरिश्तों को संदेश वाहक मानते हैं और सहायक मानते हैं, यानी समय पर फरिश्ता सहयोग देने आ जाता है। जब हम मुश्किल में होते हैं और यदि हम उनको याद करते हैं, तो वो फरिश्ते हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं, और वो फरिश्ता सहयोग देकर के चला जाता है, माना न्यारा होता है। फरिश्ता जो है वो किसी उसमें नहीं आता, बंधन में नहीं आता, माना बंधन मुक्त कहा जाता है उनको, किसी भी बंधन से वो न्यारे होते हैं। तो विदेशों में फरिश्तों की यादगार क्यों है? क्योंकि वो तो देवी देवताओं की भूमि नहीं है। भारत भूमि में तो देवी देवताओं की पूजा होती है, फरिश्तों की इतना यादगार नहीं है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि वहां बाबा के बच्चों ने जो सेवा की, सेवा तो पूरे विश्व में हुई ना, केवल भारत में तो नहीं हुई, तो फिर वहां जो सेवा हुई उसके यादगार में वो फरिश्ते, फरिश्तों की यादगार वहां बनी हुई है। किसी भी विदेश में देश में चले जाओ आप, फरिश्ते ना हो ही नहीं सकता है। तो उनको पंख दिखाते हैं, तो पंख कोई सचमुच कोई पंख नहीं होते, लेकिन वो पंख हैं ज्ञान और योग के पंख। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं तभी हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं, तभी हमारी उड़ती कला हो सकती है। यानी फरिश्ते फर्शवासी नहीं होते, इस धरती के निवासी नहीं माने जाते, फरिश्ते अर्शवासी होते हैं, यानी ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले। जैसे हम भी ब्राह्मण भी, फरिश्तों का स्थान कहाँ है? फरिश्तों का स्थान कहाँ है बोलो? सूक्ष्म वतन में। हाँ, तो सूक्ष्म वतन ऊपर का लोक है, तो फरिश्तों के का जो धाम है वो सूक्ष्म वतन, यानी ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले सूक्ष्म वतन से इस साकार दुनिया में आकर कर्म करना। तो फिर सभी संबंधों से न्यारे, बाबा कहता है कि किसी भी संबंध के आकर्षण में, यानी होता है कि और सब तो कोई संबंध नहीं है, मेरे को इतना आकर्षण नहीं है, लेकिन एक ये संबंध जिसको बाबा कई बार कहता है कि एक सखा या एक सखी तो होना ही चाहिए, एक दोस्त तो होना ही चाहिए जिससे हम दिल की बात कर लें, कभी मन भारी होता है तो किससे बोलें, या ये मेरे भाई या बहन है बस इतना ही। तो बाबा कहता है एक भी संबंध अगर कहीं जोड़ा तो वो एक रिश्ता भी बाबा से कम हो गया। तो सारे रिश्ते बाबा से ही, कोई भी मेरा कोई एक खास है, ये मेरा खास है बस, बाकी तो सब रिश्ते बाबा से हैं, नहीं, सब खास बाबा ही है, जीवन का आधार बाबा ही है, एक बाप दूसरा ना कोई, जिसे बाबा कहता है एक बाप ही संसार है, तब हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। फिर हमने देखा मम्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया उसके लिए, क्या बाबा के लिए सुनते हैं ना हम, कि जब संदेशी ये संदेश लेकर के आई कि वतन में भी उसने ब्रह्मा बाबा को देखा और यहाँ भी बाबा को देखा, देखती है वो, तो फिर पूछा उससे कि क्या अंतर था दोनों में, तो कहा कि जो ऊपर बाबा हैं उनकी लाइट जो इस साकार वतन में बाबा है उससे ज्यादा है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है जो ऊपर बाबा है सूक्ष्म वतन में। तो उसके बाद बाबा ने तपस्या बढ़ा दी अपनी कि मुझे संपूर्ण बनना है, मैंने बताया वो बाबा का संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, अभी भी बाबा उस फरिश्ता स्वरूप से ही सेवा कर रहे हैं। कईयों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है, कई भाई बहने साक्षात्कार से ज्ञान में आते हैं, विदेशों में तो ज्यादातर भाई बहने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार से आए। जैसे ओम मंडली में हम सुनते हैं कि कृष्ण का साक्षात्कार होता था, साथ साथ में ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार होता था। आप में से कोई है जिन्हें साक्षात्कार हुआ फिर ज्ञान में आए? देखो इतनी छोटी सी सभा में भी तीन भाई बहने बैठे हैं। तो बाबा ने बताया जब हमारी फरिश्ता स्थिति होगी तभी हम साक्षात्कार मूरत बनेंगे, क्योंकि जो स्वरूप दिखाई देता है वो लाइट में ही दिखाई देता है। जैसे हम आपस में भी एक दो को देख पा रहे हैं तो लाइट है तभी हम देख पा रहे हैं। तो जब हमारा ये स्वरूप जो हमारा स्थूल रूप है वो भी हम लाइट के रूप में अधिक समय रहेंगे। हम ये महसूस करेंगे कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, परम धाम से मैं बाबा के कर्तव्य अर्थ अवतरित हुई हूँ, लेकिन हूँ मैं सूक्ष्म वतनवासी, मैं वो लाइट के शरीर वाली आत्मा। चाहे हम यहाँ कर्म भी कर रहे हैं लेकिन वो लाइट के शरीर में। तो जितना अधिक से अधिक हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, योग करते हैं तब तो हम अनुभव करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कर्म करते हुए भी, चलते फिरते भी, अपने आप को जितना लाइट स्वरूप में अनुभव करेंगे उतना ही हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। अभी साक्षात्कार नहीं होते क्योंकि हमारा वो फरिश्ता स्वरूप में हम अभी नहीं आए हैं। कभी कभी अनुभव करते हैं, हम योग में बैठे होते हैं वो भी सारा समय नहीं, केवल थोड़ा समय। लेकिन जब अधिक समय या हम कहेंगे निरंतर, जब निरंतर ये हमारी स्थिति होगी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति बनाई और बाबा साक्षात्कार मूर्त बने, आज भी बाबा के ही साक्षात्कार होते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चों के भी अंत में साक्षात्कार होंगे। और फरिश्ता माना जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी का भी बोझ ना हो। हम सोचते हैं मेरी जिम्मेवारी है, मैं गृहस्थी, हम संभालते हैं, जो भी गृहस्थी में रहते हैं बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया है, ट्रस्टी माना सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, तन मन धन सब सब कुछ तेरा, ऐसे हम कहते हैं ना। तो जो भी जिम्मेवारियां हैं वो बाबा की हैं, बाबा करण करावनहार है, मैं निमित्त हूं, हम निमित्त बनकर के ये कर्म कर रहे हैं, हल्के बिल्कुल सब बोझ बाबा के ऊपर है, सब जिम्मेवारी बाबा की है। तो मैं और मेरेपन से मुक्त जो फरिश्ता है, और फरिश्तों का कार्य होता है सकाश देने का, जिसको बाबा कहता है अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा, विश्व की आत्माओं को जो हम प्रकाश देते हैं, मनसा सेवा करते हैं, वो पूरे विश्व का चक्र हम फरिश्ता स्थिति के द्वारा लगा सकते हैं, क्योंकि वो फरिश्ता कहीं भी जा सकता है। जो मन की गति है वही फरिश्ते की स्थिति है। जैसे ब्रह्मा बाबा की स्पीड कितनी तेज है, बाबा कहते हैं बाबा क्यों अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त क्यों हुए, क्योंकि जो साकार में सेवा की स्पीड थी वो कम थी, लेकिन अब अव्यक्त स्थिति में बाबा की स्पीड अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, बेहद जिसको हम बोलते हैं, बेहद की सेवा में बाबा हाजिर हैं। तो ऐसे हम भी फरिश्ता स्थिति के द्वारा एक स्थान पर बैठे हुए उस अंतर्वाहक शरीर के द्वारा जहां पहुंचना चाहें वहां पहुंच सकते हैं और आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। तो ये सूक्ष्म सेवाएं हैं। अभी तक ज्यादा हमें सेवाओं का अभ्यास है वाचा कर्मणा की सेवाओं का। कर्मणा बहुत सहज है, कर्मणा सेवा हम सभी सहज करते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म करने का एक नेचुरल अभ्यास है। वाचा थोड़ा सा उससे मुश्किल है, थोड़ा अभ्यास के बाद वाचा भी सहज हो जाती है। लेकिन जो मनसा सेवा है, जो हमारी अव्यक्त स्थिति के द्वारा सेवा है, वो सेवा हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि उस स्थिति में मन को स्थित करना होता है। तो उसके लिए वो अभ्यास अटेंशन जितना हम अभी से करेंगे, और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा तो हमें बताते हैं ना अंत की स्थितियां कैसी होंगी, अंत की स्थितियां होंगी हमें बहुत हलचल में लाने वाली, मन बुद्धि को खींचने वाली, मना सभी अपना जोर लगाने वाले होंगे, माया भी जोर लगाएगी, प्रकृति भी जोर लगाएगी, वातावरण वाइब्रेशन भी तमो प्रधान होगा, कुछ इविल सोल्स भी, क्योंकि फ्री सोल्स हो ज्यादा हो जाएंगे तो इविल सोल्स का इफेक्ट भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में भी एक बार दूसरा ना कोई ये स्थिति हमारी रहे और वो स्थिति में हम अन्य आत्माओं को भी सेवा से सहयोग दे पाए, तो उस समय नहीं कर सकते हम। अभी से अगर हमारा अभ्यास होगा तो ही हम वो सेवा कर पाएंगे अंत समय में, और हम भी पास हो जाएंगे, माना माया जीत होंगे, विघ्न जीत होंगे, विजयी बनेंगे, तभी हम कर पाएंगे। तो वो तब होगा मंथन, जैसे कहा मंथन करने का अभ्यास, मंथन के साथ साथ फिर बाबा से जो हमारा संबंध है रू रिहान का वो संबंध, और फिर अव्यक्त स्थिति का ये अनुभव। इस तरह से ये हमारा पुरुषार्थ जो हमें उड़ती कला में ले जाने वाला और तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराने वाला है। ओम शांति। अपने मन को ले चलें बाबा के पास, मैं आत्मा अपने अव्यक्त स्वरूप में फरिश्ता स्वरूप में स्वयं को सूक्ष्म वतन में अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाप दादा, वतन में बहुत स्नेह भरी दृष्टि से मेरा स्वागत कर रहे हैं। महसूस करें मैं बाबा से रूहानी दृष्टि से शक्तियां ले रही हूं। मैं अपने आप को लाइट के शरीर में बाबा के समान अनुभव कर रही हूँ। बाबा आपने मुझे अपना बनाकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। संगम युग पर आप मेरे साथी बने हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। भगवान ने मुझे अपनाया है। आपने मुझे शिक्षक बनकर तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान समझाया है। मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया है। मुझे सद्गति की राह दिखाने वाले हैं। मुझे स्मृति दिलाई है। मैं आत्मा, ये देवात्मा थी, आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। आपने मेरे जीवन को इतना ऊंच, श्रेष्ठ और पवित्र बना दिया है। सर्वशक्तिवान हूँ। आप ही मेरे माता पिता हैं, मेरे सत शिक्षक सतगुरु हैं। मेरे साथी हैं, मित्र हैं। सदा हर कर्म में। मेरे साथ हैं, मेरी मुश्किलों को आसान करने वाले हैं, मेरे सारे बोझ लेकर मुझे हल्कापन, न्यारापन अनुभव कराते हैं। मेरे दुख हरता, सुख करता है, सदा मेरी मदद के लिए हाजिर हैं। मेरा बाबा ये आवाज मेरे दिल से मैं महसूस करती हूँ। बाबा ही मेरा संसार है, मैं बाबा के स्नेह में स्वयं को समाया हुआ महसूस कर रही हूँ। महसूस करें बाबा प्यार का सागर है और वो ईश्वरीय स्नेह मुझ आत्मा में समा रहा है। उस स्नेह में मैं बाबा के समान बन गई हूँ। कुछ समय इस स्थिति में ही मन को स्थित रखें। बाबा ने मुझे स्वयं के साथ विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए भी निमित्त बनाया है। बाबा के साथ मैं अव्यक्त रूप में, फरिश्ता रूप में, विश्व की आत्माओं की सेवा पर हूँ। महसूस करें विश्व के ग्लोब पर बाबा मेरे द्वारा सभी आत्माओं को जिसको जो आवश्यकता है वो दे रहे हैं। सभी को अपने पिता से वर्षे का अधिकार प्राप्त हो, विश्व की समस्त आत्माओं का कल्याण हो, सभी दुखी आत्माओं को अपने दुखों से मुक्ति मिले, शांत आत्माओं को शांति प्राप्त हो, समस्त प्रकृति भी सतो प्रधान बने, ऐसे कुछ समय बाबा के साथ अपनी गुणों की सकाश के द्वारा सेवा करें। अपने बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी हूँ। ये मेरा हीरे तुल्य जन्म है, विश्व की आत्माओं के हम पूर्वज हैं। आधार मूरत उद्धार मूरत हैं,
शांति सागर की।